प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 8 नवंबर 2016 के afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने बड़ा रोचक सा विषय चुना है और सच बात यह है कि यह विषय भी मैंने केवल चुना है, इसका फैसला मैंने केवल लेने के संदर्भ में किया है। विषय क्या होना चाहिए यह विषय मुझे आप लोगों में से ही किसी प्रिय श्रोता ने सुझाया है। पिछले एक सप्ताह से यह विषय मेरे पास 2-3 बार मेल के जरिए आ रहा था और मैं इसके लिए एक उपयुक्त समय की तलाश में था कि दूसरे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और तात्कालिक विषय हैं वो खत्म हो जाएं तो फिर मैं इस विषय को उठाऊं। उसका कारण ये भी था मित्रों कि ये विषय जो है ये बड़ा पेरेनियल विषय है। पेरेनियल का मतलब है कि सार्वकालिक विषय है और सबसे जुड़ा हुआ विषय है और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला विषय भी है। इस पर शायद सदियों से सबसे ज्यादा बातचीत हुई है, सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, इसके बाद भी अभी तक ये सबसे उलझा हुआ विषय है। निश्चित रूप से आप लोगों को थोड़ी सी उत्सुकता हो गई होगी कि यार ऐसा कौन सा विषय है, सदियों से बात हो रही है, हजारों किताबें लिखी गई हैं और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ ये विषय है और हर युग के मनुष्य से जुड़ा हुआ विषय है, फिर भी समस्या सुलझ नहीं रही है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि इससे पहले कि मैं आपको विषय के बारे में बताऊं मुझे यह बता देना चाहिए कि मैं भी कोई इसको सुलझाने के लिहाज से आपके सामने पेश नहीं हूं, प्रस्तुत नहीं हूं। मैं क्या सुलझा पाऊंगा, जब इतने बड़े बड़े लोग और इतने सालों से नहीं सुलझा पाए तो मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं इसको बहुत ही गहराई से एक्सेप्ट करता हूं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब सुलझा ही नहीं पाते हैं पाएंगे तो फिर आपने इस विषय को लिया क्यों। मेरे मित्रों लिया इसलिए क्योंकि आप सब खुद इसे सुलझाइए। दरअसल यह विषय ही ऐसा है, सच पूछिए, कि आपके इस विषय से जुड़े सवाल का उत्तर न तो मैं दे सकता हूं और मुझे लगता है कि कोई दूसरा भी नहीं दे सकता। तो फिर क्या किया जाए? किया केवल यह जा सकता है कि यह सवाल ही ऐसा है कि इसका उत्तर आपको खुद तलाश करना पड़ेगा, अपने लिए ही तलाश करना पड़ेगा। याद रखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप सबके लिए तलाश कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी यह समस्या है और मैंने अपने इस समस्या को सुलझा लिया तो मुझे इस गलत फहमी में कतई नहीं रहनी चाहिए कि मैं इसी पैटर्न से, इसी तरीके से दूसरे की इससे जुड़ी समस्या को भी सुलझा लूंगा। नॉट एट ऑल, मतलब मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है और शायद इसीलिए अभी तक इसका कोई हल भी नहीं मिल पाया है क्योंकि यह निहायत ही व्यक्तिगत है, मुझे ऐसा लगता है मित्रों। तो निश्चित रूप से अब आपको लग रहा होगा कि कम से कम विषय तो बता ही दिया जाए। तो मित्रों विषय यह है कि मेरे पास एक स्टूडेंट का मेल आया था और उस स्टूडेंट की बेचैनी को मैं समझ सकता हूं क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर मेल आया और फिर मेल आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस विषय को मुझे लेना ही चाहिए। और उनका जो प्रश्न था या कह लीजिए उनकी जो समस्या थी वो बड़ी जायज समस्या थी और मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि कम से कम इस समस्या को उन्होंने उठाया। तो अदरवाइज तो हम उठाते ही नहीं और बस मानते चले जाते हैं, मानते ही क्या करते चले जाते हैं, फिर परिणाम मिले या न मिले हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो मित्रों उनकी समस्या ये थी कि सर कहा जाता है कि अगर हमको कोई भी उपलब्धि जिंदगी में कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद भी हम भगवान की पूजा वगैरह में क्यों लगे रहते हैं ये सोच करके कि हमारे लिए वो कर देगा या वहां से हमें उपलब्धि मिल जाएगी, वो हमारी मदद कर देगा, तो हम ऐसा क्यों करते हैं। कुल मिलाकर के इसी तरह की भावना उनके शब्दों में थी। एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं उनके नहीं बता पा रहा हूं लेकिन उनके कहने का मतलब कुल मिलाकर यही था। सच पूछे दोस्तों तो यह एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं। पता नहीं कितने लाइफ मैनेजमेंट इसी विषय को लेकर आपके साथ बातचीत की जा सकती है लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो मित्रों मैं इसका, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उत्तर नहीं देने जा रहा हूं। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मेरे पास, मेरे दिमाग में अगर यह समस्या आती तो मैं उसका समाधान कैसे करता, केवल मैं वह आपको पैटर्न बता रहा हूं। या आप यूं कह लीजिए कि मैं आपको कुछ वो बेसिक कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं जिनको आधार बनाकर या जिस पर विचार करके आप अपने उत्तर शायद ढूंढने में सफलता प्राप्त कर सके। गारंटी उसकी भी नहीं है। तो मित्रों, देखिए मैं अब थोड़ी सी बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, समय जितनी मुझे इजाजत देगा वहां तक। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, समस्या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बात प्रश्न बन जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं समस्या भी बन जाती है। तो मित्रों, यहां देखना यह होगा कि जो हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, जो हम पूजा की बात कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखिए एक में ही जुड़ी हुई है ना, कि हम पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमको धर्म मिलेगा या ईश्वर प्रसन्न होंगे, फिर वह ईश्वर हमें कुछ ना कुछ उपलब्धि दे देंगे, जबकि दूसरी ओर हम सोचते हैं कि काम करने से सफलता मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें एक साथ गुथी हुई है, कुछ रंगीन स्वेटर जैसा मामला आपको नहीं लग रहा है कि एक कई तरह के रंगों के ऊन से बनाया गया एक डिजाइनर स्वेटर है। स्वेटर तो एक ही है, प्रश्न तो एक ही है, लेकिन यह एक ऐसा स्वेटर है जिसमें कई रंगों के ऊन के गोलों के तार पिरोए गए हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, और एक पैटर्न बन गया है, एक खूबसूरत डिजाइन बन गया है, और उस डिजाइन के रूप में ही हमारे सामने ये खूबसूरत प्रश्न भी है। तो मित्रों, इस स्वेटर के डिजाइन में तीन रंग के धागे हैं, ऊन के धागे हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है धर्म, और तीसरा है पूजा। राइट, ये तीन बातें हैं। मैं अभी पुरुषार्थ को अलग कर देता हूं, लेकिन बीच में बातचीत में हो सकता है कि पुरुषार्थ आ जाए, क्योंकि पुरुषार्थ थोड़ी सी अलग तरह की चीज हो जाती है, तो मेरी समझ से बात ज्यादा उलझे ना, क्योंकि जितने ज्यादा धागे होंगे उलझा उतना ज्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं उसे किनारे कर देता हूं। राइट, तो मित्रों, आप इसे समस्या के समाधान के रूप में न सुने, इसे केवल इस रूप में सुने कि मैं आपको आपके हाथ में धागे थमा रहा हूं, आप अपने ढंग से अपना स्वेटर अपनी पसंद के डिजाइन का बना लीजिएगा। राइट, और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये केवल मेरी अपनी ही बात है, आप इसमें अपनी बात भी डालने को स्वतंत्र हैं। मैं आपकी उस स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता हूं और किसी भी कीमत पर उसे खारिज नहीं करना चाहता, और न कभी करूंगा। ईश्वर न करे कि कभी मेरी बात से आपकी वह स्वतंत्रता खारिज हो। दोस्तों, ये जो ईश्वर, धर्म और पूजा, हम अब केवल इन तीन पर बात करेंगे, ये तीनों वैसे देखने पर, ऊपरी तौर पर देखने से एक जैसे लगते हैं। हम धर्म करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, हम पूजा करेंगे तो धर्म मिलेगा, और धर्म होने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। यानी कि ईश्वर इस तीन कड़ियों में सबसे टॉप पर है, धर्म बीच में है, और पूजा बिल्कुल नीचे है, यानी कि तीन स्तर हैं। मुश्किल ये है मित्रों कि जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तब सच पूछे तो हम उलझ जाते हैं। मुझे यह लगता है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और जो संकट पैदा हो रहा है वह इसलिए पैदा होता है कि हम तीनों को एक मान लेते हैं। पहली बात, हालांकि मेरी यह बात आप लोगों को अटपटी लगेगी, अटपटी इसलिए लगेगी कि शुरू से हम इन तीनों को एक ही मानकर चले हैं, एक ही मानकर चलते हैं। हमारी चेतना में वही बात है, हमें अपने धर्म ग्रंथों के जरिए, अपने नीति कथाओं के जरिए, नैतिक पाठों के जरिए यही पढ़ाया गया है कि ये तीनों एक ही हैं, कहीं ना कहीं एक है, और इसके सर्वोच्च पर ईश्वर है। मुझे ये तीनों अलग अलग मालूम पड़ते हैं, अलग अलग इस रूप में। दोस्तों, आज ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आगे फिर इस पर बात करूंगा। अलग अलग कैसे हैं? ईश्वर है या नहीं है विवादास्पद है। राइट, मुझे भी नहीं मालूम कि ईश्वर है या नहीं है। मित्रों, बावजूद इसके कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, मैं सुबह रोज पूजा करता हूं, मतलब मैं सगुण परंपरा का हूं, लेकिन मैं पूजा कर रहा हूं इसके बावजूद कि मैं यह मानता हूं कि कोई हाथ पैर नाक कान और आंख वाला ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात लगेगी कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर इस रूप में है, इसके बावजूद मैं ऐसे ही पूजा करता हूं जैसे कि ईश्वर है। मैं उन्हें पुष्प चढ़ाता हूं, मैं उनके सामने अगरबत्ती दिखाता हूं, मैं उनके सामने दीपक जलाता हूं, मैं उनके सामने प्रार्थना करता हूं, चरण वंदन करता हूं, ये सब करता हूं। और हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप देख रहे हैं एक विचित्र सी चीज, एक बहुत ही गड़बड़ सी चीज। और सच पूछे तो मैं मानता हूं कि वो इस रूप में नहीं है। तो दोस्तों, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। आप अपने लिए अपना ईश्वर चुन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आस्था स्थापित कर सकते हैं। इस पर पूरी आपकी छूट है और मुझे लगता है कि यह छूट होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरे तत्व पर, धर्म। यह धर्म क्या है? क्या धर्म ईश्वर को पाने का माध्यम है, उससे जुड़ा हुआ, या धर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट है? जैसे मुझे लगता है कि ईश्वर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से धर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। स्वर्ग नर्क की कल्पना हम अपने ढंग से कर लें, उसका भी ईश्वर से कोई संबंध नहीं, अगर वो है तो। और ईश्वर है या नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस रूप में नहीं मान पाता कि ईश्वर है, लेकिन मेरे लिए ईश्वर एक दूसरे रूप में है, उसकी बात मैं कभी बाद में करूंगा। मैं तो केवल सगुण परंपरा के संदर्भ में कह रहा हूं कि मेरे लिए स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कभी मुझे दर्शन देंगे उसी रूप में जैसे कि मेरी कल्पना में है, या हम चित्रों में देखते हैं, या जिन मूर्तियों की मैं आराधना करता हूं उस रूप में कभी मुझे दर्शन देंगे, मुझे इसका कतई विश्वास नहीं है। और शायद अगर आकर के वो कहें कि मैं वही हूं जिसकी तुम पूजा करते हो, तो मैं विश्वास भी न कर पाऊं। मित्रों, आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं और मैं आपके इस आरोप को सर माथे पर लेता हूं, लेकिन मैं इस बात को बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों, दूसरा आता है धर्म। मुझे धर्म आचरण लगता है, जिसको हम करते हैं वो धर्म है। पूजा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, जो पूजा पाठ है इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आचरण भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मेरे कर्म, जब अच्छे कर्म होते हैं तो उसे मैं धर्म कहता हूं, और जो बुरे कर्म होते हैं उसे मैं अधर्म कहता हूं। अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे, बिना दूसरे के अस्तित्व को क्षति पहुंचाए, जिससे मैं दूसरों के अस्तित्व को बनाए रख सकूं, और तीसरा है जिससे इस जगत का अस्तित्व बना रह सके और मैं इसे बढ़ा सकूं। मेरे लिए धर्म के ये तीन आचरण है। मेरा हर वह काम जो मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरे के अस्तित्व की कीमत पर नहीं। दूसरा, जब मैं अपने से निकलकर बाहर जाता हूं, तो फिर मेरा वह काम जो दूसरे का हित कर सकता है, दूसरे के अस्तित्व को बनाने में बचाने में मदद कर सकता है। और तीसरा, ये जो पूरा का पूरा जगत है, पूरा का पूरा संसार है, इसके अस्तित्व को बनाए रखने में मैं मदद कर सकता हूं। ये मेरे लिए धर्म है, ये मेरा आचरण है, यानी कि मेरा कर्म है, जिसे पुरुषार्थ आप कह सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों, वो है पूजा। पूजा मेरे लिए एक माध्यम है, एक मीडियम है, अनुभूति अंदर, खुद के अंदर उतरने का एक माध्यम है, अपने ही अंदर उतरने का माध्यम है। बाहरी आवरण है, ये एक तरीका है, एक मीडियम है, जिससे कि मैं अपने अंदर उतर सकूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी जिंदगी के दो पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष है जो बाहर से दिखाई दे रहा है। मुझे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकाश चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये मेरी भौतिक जरूरतें हैं। लेकिन मुझे अपने अंदर भी, अंदर की दुनिया तक भी पहुंचना है, जहां मेरी भावनाएं हैं, जहां मेरी चेतना है, जहां मेरे विचार हैं, मुझे वहां तक भी पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने एक रास्ता इजाद किया है, एक पगडंडी खोली है अपने लिए, खोजी है, और वह है पूजा। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व रखते हैं मित्रों मेरे लिए। तो आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगा, कल हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।